शिवानी के उपन्यास पृष्ठ संख्या 89। वैसे तो शिवानी के सभी उपन्यासों में ग्रामीण एवं नगरीय जीवन का मिला जुला परिवेश मिलता है, तथापि उनके कालिंदी, भैरवी, 14 फेरे तथा 2 सखियां जैसे उपन्यासों में पहाड़ी एवं ग्रामीण परिवेश उपलब्ध होते हैं। पैराग्राफ चेंज 21वां। कालिंदी एक नारी प्रधान उपन्यास है। कालिंदी उसकी नायिका है। उसके पितामह पंडित रुद्रदत्त कुमाऊं प्रदेश के माने हुए ज्योतिषी हैं। उनकी पुत्री अन्ना का विवाह कमलाकांत पंत से हुआ था, जो एक नंबर का शराबी और जुआरी था। ससुराल के असह्य त्रास से मुक्ति दिलाने के लिए पंडित जी अन्ना को अपने यहाँ ले आते हैं। पंडित जी के 3 पुत्र हैं, नरेंद्र, देवेंद्र और महेंद्र। नरेंद्र अमेरिका में बस गया था और महेंद्र दिल्ली में किसी अच्छे व्यवसायिक प्रतिष्ठान में था। पिता का नाम तो केवल देवेंद्र रोशन कर रहा था, जो पुलिस में बड़ा अफसर होने के बावजूद प्रामाणिक, निष्ठावान और चरित्रवान रह सका था। अन्ना का पूरा दायित्व वह उठाता है। अन्ना की पुत्री कालिंदी को वह अपनी ही पुत्री समझकर उसकी बढ़िया परवरिश करता है और उसे ऊंची शिक्षा दिलाकर डॉक्टर बनाता है। कालिंदी भी अपने देवेंद्र मामा तथा शीला मामी को बहुत चाहती है। शीला की बहन मीरा कालिंदी का रिश्ता एक पढ़े लिखे सुशिक्षित डॉक्टर लड़के से करवाती है। लड़के का पिता कनाडा में था और उसका अच्छा खासा व्यवसाय था। रुपये पैसे की कोई कमी नहीं थी। लड़का डॉक्टर होने के साथ साथ सुदर्शन व्यक्तित्व का धनी भी था। अतः कालिंदी ने अपनी सहेली माधवी के कहने पर उस संबंध पर स्वीकृति की मुहर लगा दी थी। परंतु लड़के का पिता निहायत कंजूस, लोभी और कमीने किस्म का इंसान था। देवेंद्र ने कालिंदी को अंधेरे में रखकर दहेज के रूप में 30,000 कैश दे दिए थे और दूसरे 50,000 शादी वाले दिन देने की बात तय की थी, और उन्होंने रुपए भी तैयार रखे थे। परंतु लड़के का पिता अपना धैर्य खोते हुए सबके बीच में पैसे की मांग कर बैठता है। अतः इस बात की भनक कालिंदी को पड़ जाती है। कालिंदी नववधू के सिंगार को नोचती हुई रणचंडी के रूप में सबके सामने आती है। पृष्ठ संख्या 90। और लड़के के बाप तथा उसके रिश्तेदारों को आड़े हाथों लेते हुए खूब भला बुरा सुनाती है। बारात वापस चली जाती है। देवेंद्र नौकरी से त्यागपत्र देकर पहाड़ों में स्थित अपने गांव चला जाता है। कालिंदी दिल्ली के अस्पताल में डॉक्टरी करती है। वह बीच बीच में दिल्ली से पहाड़ों में अपनी माँ तथा मामा मामी को मिलने आती रहती है। कई वर्ष बाद कालिंदी अपने मामा मामी के पास थी। एक युवक आता है। वह वही युवक था जिससे कालिंदी का रिश्ता तय हुआ था। परंतु कालिंदी उसकी एक भी बात सुने बिना दिल्ली चली जाती है। वस्तुतः उसने 2-3 बार पत्र भी लिखे थे। कालिंदी उसके पत्रों को बिना पढ़े ही फाड़ डालती थी। उसने बताया कि उसके पिता का देहांत हो चुका है और वह उनके 30,000 रुपये लौटाने आया है, ताकि उसके पिता का श्राद्ध शास्त्रोक्त विधि से हो सके। बातों से यह भी ज्ञात हुआ कि उसने भी अभी तक विवाह नहीं किया था। फलतः अन्ना उसे लेकर दिल्ली जाती है, उसका तथा कालिंदी का समझौता करा देती है। यहाँ लेखिका ने इस तथ्य को रेखांकित किया है कि अशिक्षित होने के कारण जहाँ अन्ना को जीवन पर्यंत दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है, वहाँ सुशिक्षित होने के कारण कालिंदी आत्मनिर्भर रह पाती है। विवाह को ठुकराने का साहस भी उसकी इसी आत्मनिर्भरता का परिणाम है। प्रकारांतर से लेखिका यही संदेश देती है, आत्मनिर्भर हुए बिना कोई भी स्त्री स्वाभिमान से नहीं जी सकती। इस मुख्य कथा के साथ माधवी और अखिलेश की कथा, बसंत मामा और लाल मामी की कथा, एलकी और पिंटू की कथा, शारदा वर्मा और प्रोफेसर वर्मा की कथा, रंजना और अबीत की कथा, कालिंदी के बचपन के साथी बिरजू की कथा आदि कथानकों को भी इसमें मिलाया है। पहाड़ी जीवन का एक चित्र हमें यहाँ देखने को मिलता है। शिवानी का भैरवी उपन्यास पृष्ठ संख्या 90। भैरवी में जहाँ एक तरफ महानगर दिल्ली का परिवेश है, वहाँ दूसरी तरफ पूर्वी उत्तर प्रदेश के निबड़ वन अंचल को लिया गया है। उपन्यास की नायिका चंदन और उसकी माँ कुमाऊँ के प्रदेश में रहती हैं, अतः वह परिवेश भी उनमें शामिल हुआ है। वस्तुतः दिल्ली का परिवेश तो उपन्यास में केवल एक चौथाई से भी कम है। यहाँ लेखिका ने निहायत भिन्न एवं अपरिचित परिवेश में चंदन, चरण, माया, विष्णुप्रिया आदि नारी पात्रों के नितांत नवीन जीवनानुभवों को चित्रित किया है। संपूर्ण कथा चंदन की स्मृति कथा है। चंदन की माँ राजेश्वरी एक मिशनरी स्कूल में अध्यापिका है। चंदन एक सुशिक्षित एवं अनिंद्य सौंदर्य की स्वामिनी युवती है। राजेश्वरी को उसके विवाह की चिंता है, अतः वह उसे लेकर पहाड़ों में आई है। विक्रम एक अत्यंत संपन्न परिवार का बिगड़ा हुआ युवक है। वह अपनी प्रवासी टूर के साथ पहाड़ों में गया था। वहां अकस्मात आंधी तूफान के कारण उन्हें राजेश्वरी के यहाँ आश्रय लेना पड़ा। उस एक दिन के निवास ने उसे चंदन का दीवाना बना दिया और घर पहुंचते ही अपनी माँ तथा बहन को लेकर वह चंदन के रिश्ते के लिए अकस्मात आ धमका। घर परिवार आदि को देखते हुए राजेश्वरी ने उस रिश्ते को स्वीकार कर लिया और चट मंगनी पट ब्याह तथा संस्कारों से सास ससुर पति ननद सबका दिल जीत लिया। कुछ दिनों के बाद विक्रम चंदन को लेकर कलकत्ता जाने के लिए निकल पड़ा, क्योंकि उन दिनों में उसकी पोस्टिंग वहां थी। पृष्ठ संख्या 91। ट्रेन में रात्रि के समय किसी स्टेशन पर तीन चार युवकों का एक दल उनके डिब्बे में चढ़ा। डिब्बे में नवविवाहित दंपति अकेला था। नवागंतुक युवक सब छठे हुए बदमाश थे। उन्होंने विक्रम को पकड़ते हुए चंदन पर बारी बारी से बलात्कार किया। विक्रम को भी लात घूसों से बेहोश कर दिया था। मध्य रात्रि में एक स्थान पर अचानक चंदन चालू ट्रेन से कूद पड़ती है। आंखें खुलती है तब वह अपने को स्वामी भैरवानंद नामक एक कापालिक अघोरी के अखाड़े में पाती है। भैरवानंद और माया उस निर्जन भयावह जंगल में जलती चिताओं के सामने तंत्र साधना करते रहते हैं। चरण उनकी एक दासी है। माया एक बाल विधवा थी। पहले वह एक कनकटे नाथ जोगी के घर बैठी थी। बाद में कुंभ मेले में भैरवानंद से मंत्रमुग्ध होकर उनके साथ साथ चली आई थी। वह भैरवानंद की कवला चरणी भैरवी थी। दोनों बीच में कई कई दिनों तक गायब हो जाते हैं। अफीम और चरस के नशे में माया कई कई दिनों तक अचेत अवस्था में रहती है। वहाँ का वातावरण बड़ा ही विचित्र और रहस्यमय था। चरण तो एक दिन मौका पाकर शमशान में चाय बनाने वाले खेपा के साथ भाग जाती है। भैरवानंद चंदन की ओर आकृष्ट होता है और अपने मन में उसे नई भैरवी बनाने का निर्णय कर लेता है। इस विषय में चंदन को सचेत करते हुए माया कहती है, तू तो एकदम भोली है भैरवी, पर अनर्थ होते देर नहीं लगती। मर्द का मन चाहे वह लाख साधे औकात में होता है एकदम देसी कुत्ता। सामने हड्डी रख दो तो कितनी ही सिखाया पढ़ाया हो, कभी लार टपकाए बिना नहीं रह सकता। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज संदर्भ ग्रंथ शिवानी भैरवी उपन्यास पृष्ठ संख्या 117। एक दिन भैरवानंद और माया के बीच में चंदन को लेकर झगड़ा भी हो जाता है। भैरवानंद अखाड़े से चले जाते हैं और माया को उसका पालतू नाग डस लेता है। भैरवानंद जब आते हैं तब माया अंतिम क्षणों को गिन रही थी। उसकी मृत्यु के बाद भैरवानंद उसे जल समाधि देने निकल पड़ते हैं। कमरा बाहर से बंद कर जाता है, अतः चंदन के मन में स्वामी को लेकर शंका पैदा होती है। वह खिड़की के रास्ते से भागकर किसी तरह दिल्ली पहुंचती है, परंतु वहां जाकर देखती है कि विक्रम ने दूसरी शादी कर ली है और उसी दिन उसकी पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया है, अतः वह चुपके से वहां से खिसक जाती है। 23 14 फेरे शिवानी 1992 पृष्ठ संख्या 91। 14 फेरे शिवानी का एक महत्वपूर्ण उपन्यास है। इसमें भी ग्रामीण और नगरीय जीवन का मिला जुला परिवेश है। इसमें नंदी, अहल्या, सुभ्रता ताई, मल्लिका, बसंती आदि नारी चरित्र मिलते हैं। कर्नल शिवदत्त पांडे का जन्म कुमाऊं के किसी गांव में हुआ था। पिता संस्कृत के प्रकांड पंडित थे, परंतु शिवदत्त ने अंग्रेजी साहित्य में एमए किया था। कर्नल तो उनका उपनाम था। एमए के बाद विल्सन नामक एक विदेशी उद्योगपति से कर्नल का संपर्क हुआ। पहले उनके यहाँ नौकरी और बाद में उनकी अतुल संपत्ति का स्वामी बन बैठा। विल्सन की पुत्री पिट्रिया से प्यार होते हुए अपने रूढ़िचुस्त विचारों के कारण कर्नल नंदी नामक एक गंवार लड़की से विवाह करते हैं। कर्नल के चरित्र में काफ़ी अंतर विरोध मिलता है। उनका बाह्य रहन सहन अंग्रेजी ढंग का है। रात दिन पार्टियां, बफे डिनर चलते रहते हैं, परंतु वैचारिक धरातल पर वह रूढ़ी चुस्त है। विवाह के नाम पर नंदी से विवाह कर लेते हैं, पृष्ठ संख्या 92, पर उसे गांव में ही रख छोड़ते हैं। नंदी पहले अपने ससुराल में सास ससुर के पास और बाद में अपने भाई भाभी के साथ रहती है। कर्नल से उसे एक पुत्री है जिसका नाम अहल्या है। कलकत्ते में कर्नल की एक रखेल मल्लिका। वैसे तो कर्नल के जीवन में कई स्त्रियां आती हैं, परंतु मल्लिका से उसका व्यवहार लगभग पत्नीवत है। पति के वैभव और ऐश्वर्य के रहते हुए भी नंदी को गांव में अपनी भौजाई के ताने टिसने सुनने पड़ते हैं और उसका जीवन भयंकर दरिद्रता में व्यतीत होता है। अहल्या के कुछ बड़ी हो जाने पर उसके भविष्य का विचार करके नंदी एक दिन कलकत्ता पहुंच जाती है। कर्नल उसे इस शर्त पर आश्रय देता है कि वह उसके जीवन में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगी। वैसे नंदी मल्लिका से अधिक सुंदर थी, परंतु अशिक्षित होने के कारण वह गवार और कर्नल की भाषा में कहें तो असभ्य दिखती थी। यहाँ एक नूर आदमी सो नूर कपड़ा कहावत चरितार्थ होती सी लगती है। नंदी अपनी बेटी का ध्यान करके कदाचित अपनी जिंदगी वहाँ गुजार भी देती है, परंतु कर्नल अहल्या को ऊटी के कॉन्वेंट स्कूल में भर्ती करवा देता है। नंदी वैराग्य धारण करके अपने गुरु के आश्रम चली जाती है। अहल्या जब युवती होती है तब तक अपनी माँ को विस्मृत कर चुकी होती है। मल्लिका को वह अपनी ही माँ समझती है। कर्नल अपनी बेटी को अंग्रेजी ढंग की शिक्षा तो देते हैं, परंतु विवाह तो उसका कुमाऊँ के किसी पंत से ही करना चाहते हैं। सर्वेश्वर दयाल पंत कुमाऊँ के एक अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण का पुत्र है, परंतु अपनी बुद्धिमत्ता तथा परिश्रम से आईएएस करके भारत सरकार की विदेशी सेवा में एक उच्च अधिकारी हो गया है। परंतु उसका चरित्रगत ओछापन दूर नहीं हुआ। वह अपने उपहारों से अहल्या को जीतना चाहता है, अतः जब भी कोई उपहार देता है उसका मूल्य बताना नहीं चूकता। अहल्या को उसका यह ओछापन अच्छा नहीं लगता और वह मन ही मन उससे घृणा करने लगती है। वह उसकी एक दूर की बहन तथा समवयस्का बसंती के ममेरे भाई राजू को प्यार करने लगती थी, जो भारतीय सेना में अफसर था। परंतु कर्नल अहल्या का विवाह सर्वेश्वर से ही करना चाहते हैं, अतः विवाह मंडप से भागकर वह बसंती के पति धरनीधर के यहाँ पहुँचती है। राजू घायल अवस्था में धरनीधर के अस्पताल में ही पहुँचता है। उसके ठीक होने पर दोनों का विवाह हो जाता है। इस प्रकार प्रस्तुत उपन्यास में जहाँ एक तरफ नगरीय परिवेश है, वहाँ दूसरी तरफ कुमाऊँ प्रदेश का ग्रामीण परिवेश भी सजीव हो उठता है। 24 शिवानी का दो सखियां उपन्यास, पृष्ठ संख्या 92। शिवानी का यह उपन्यास उत्तरावस्था में नारी को जिस प्रकार की व्यवस्थाओं से गुजरना पड़ता है उसका लेखा जोखा है। सखुबाई और आनंदी दोनों का अपना भरा पूरा परिवार था, परंतु फिर भी दोनों को एक वृद्धा आश्रम में रहना पड़ता है। यह वृद्धा आश्रम शहर के शोरगुल से दूर एक ग्रामीण अरण्य प्रदेश में था। पास ही में कहीं समुद्र है। परिवार द्वारा संतप्त, दुखी और पीड़ित वृद्ध तथा वृद्धाएं प्राय यहाँ आश्रय ग्रहण करते हैं और अकेले आश्रम वासियों के साथ जीवन व्यतीत करते हैं। कभी कभी मानसिक दृष्टि से परेशान तथा अर्धविक्षिप्त से युवक युवतियों को भी यहाँ रखा जाता है। पंजाब की गुरविंदर कौर भी इसी प्रकार की युवती है। पृष्ठ संख्या 93। वह आश्रम में सखुबाई के साथ आराम से अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। अपने स्वभाव से उसने सभी आश्रम वासियों के दिल जीत लिए थे, परंतु उसका यह सुख भी विधाता से देखा नहीं गया। करतार सिंह नामक एक प्लम्बर जो गुरविंदर के गांव का था, गुरविंदर के कुत्सित अतीत की कहानी में नमक मिर्च लगाकर लोगों को ऐसा कहता कि गुरविंदर का उस आश्रम में रहना मुश्किल हो जाता और एक दिन वह आत्महत्या कर लेती है। गुरविंदर की मृत्यु के पश्चात उसके कमरे में आनंदी रहने आती है। अपने शुष्क और सूखे सूखे स्वभाव के कारण सखुबाई की बहुत कम लोगों से पटती है। अपने बेटे तथा समाज से उसने जो चोटें खाई थी उसके कारण वह कठोर हो जाती है, परंतु उसके भीतर की अंतःसलीला बिल्कुल सूख नहीं गई थी। आनंदी के साथ उसकी अच्छी पटती है और दोनों में सखियता का संबंध स्थापित हो जाता है, परंतु दोनों के स्वभाव में यह अंतर था कि सखुबाई जहाँ संसार और पारिवारिक मोह माया से ऊपर उठ चुकी है, वहाँ आनंदी बाई अपने पुत्र तथा पुत्रियों के प्रति एक प्रक्षण में मोह सा है। आनंदी के 3 संतानें हैं, राधा, रुक्मिणी, 2 पुत्रियाँ तथा 1 पुत्र रमेंद्र। आनंदी ने खूब लाड प्यार से तीनों की परवरिश की, उन्हें लिखाया पढ़ाया, उच्च शिक्षा प्रदान करवाई, परंतु तीनों की ओर से उसका मोह भंग हुआ। पुत्र रमेंद्र विदेश में जाकर पत्नी तथा ससुराल का हो गया। बेटियों ने कुछ समय तो बारी बारी से माँ को अपने पास रखा, परंतु माँ की संपत्ति हथियाने के बाद धीरे धीरे वे भी उनसे विरक्त हो गई। आनंदी के पास अब एक मूल्यवान माला और बहुमूल्य हीरे की अंगूठी रह गई है। राधा और रुक्मिणी आनंदी को आश्रम में भर्ती करवा जाती हैं। पहले तो साल में 1-2 बार आती थी, परंतु बाद में वह क्रम भी टूट जाता है। बेटे तथा बेटियों के जिस निर्मम और निर्मोही व्यवहार से दुखी होकर आनंदी समुद्र में छलांग लगा देती है, मरने से पूर्व वह सखुबाई को अपनी अंगूठी दे जाती है तथा सखुबाई को एक पत्र लिखती है जिसमें वह निर्देश देती है कि उसकी बहुमूल्य माला उसकी बेटियों को दे दी जाए। सखुबाई अंगूठी को रख लेती है, परंतु माला को समुद्र में फेंक देती है। इस प्रकार प्रस्तुत उपन्यास में लेखिका ने वृद्धों पर गहराते जाते विश्व जनीन संकट की ओर संकेत किया है। कुछ वर्ष पूर्व अमेरिका से एक अति समृद्ध एवं संपन्न व्यक्ति ने अपनी समूची संपत्ति एक पोस्टमैन के नाम कर दी थी। ऐसा नहीं था कि उसके परिवार में कोई नहीं था, बल्कि बड़ा भरा पूरा परिवार था, परंतु वृद्धावस्था में कोई उसके पास फरकता नहीं था। उसके एकाकी जीवन की पीड़ा की चरम परिणति ही उसके उस व्यवहार में दृष्टिगत हुई है।